इब्रानियों अध्याय 12। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक बोझ को और उस गुनाह को जो हमें आसानी से जाल में फंसाता है दूर करें, और वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास की शुरुआत करने वाले और मजबूत करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिन्होंने उस खुशी के लिए जो उनके आगे रखी थी शर्म की कुछ परवाह ना करके क्रूस का कष्ट सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठे। इसलिए उन पर ध्यान करो जिन्होंने अपने विरोध में गुनहगारों की इतनी दुश्मनी सहली कि तुम निराश होकर हिम्मत ना छोड़ दो। तुमने गुनाह से लड़ते हुए उससे ऐसा मुकाबला नहीं किया कि तुम्हारा खून बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको बेटों की तरह दिया जाता है भूल गए हो कि
हे मेरे बेटे, प्रभु की डांट डपट को तुच्छ न जानो, और जब वो तुम्हें घुड़के तो धीरज ना छोड़ना, क्योंकि प्रभु जिससे प्यार करते हैं उसको डांटते डपटते भी हैं, और जिसे बेटा बना लेते हैं उसको छड़ी भी लगाते हैं।
तुम दुख को डांट फटकार समझकर सहलो, परमेश्वर तुम्हें बेटा बेटी जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करते हैं। वे कौन सा बेटा बेटी है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो डांट डपट जिसके हिस्सेदार सब हुए हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम बेटा बेटी नहीं पर वे विचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे संसारिक पिता भी हमें डांटा फटकारा करते थे और हम उन्हें आदर देते थे, तो क्या हम आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें जिससे जीते रहें? शारीरिक पिता तो अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए अनुशासन करते थे, परंतु परमेश्वर तो हमारे फायदे के लिए करते हैं कि हम भी उनकी पवित्रता के हिस्सेदार हो जाएं। इन दिनों में हर प्रकार की डांट फटकार आनंद की नहीं परंतु शोक ही की बात दिखाई देती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ सही जीवन जीने का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और कमजोर घुटनों को सीधे करो और अपने पांव के लिए सीधे रास्ते बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए परंतु ठीक हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को बिल्कुल ना देखेगा, और ध्यान से देखते रहो ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर की कृपा से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर दुख दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन वे विचारी या एसाव की तरह टेढ़ा हो जिसने एक निवाले के बदले अपने पहलौटे होने का पद बेच डाला। तुम जानते तो हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो वो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर चाहने पर भी मन बदलाव का अवसर उसे ना मिला। जब परमेश्वर ने सीनाई पहाड़ पर नियम शास्त्र दिया था उस समय जलती आग, अंधेरा, काली घटा और बवंडर था। ऐसे पहाड़ के पास तुम नहीं आए हो, ना ही तुमने बिगुल किसी आवाज में डरावना संदेश सुना कि तुम्हें परमेश्वर की दुहाई देनी पड़ी हो कि वह तुमसे बातें ना करें, क्योंकि वह उस आज्ञा को ना सह सके कि
यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उसे पथरवाह किया जाए।
और वो दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा,
मैं बहुत डरता और कांपता हूँ।
परंतु तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गिक यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौटों की साधारण सभा और चर्च या जिन लोगों के नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और मुक्ति पाए हुए उन लोगों की आत्माओं के पास जिन्हें निर्दोष ठहराया गया, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून से उत्तम बातें कहता है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग यदि पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले की अनसुनी करके कैसे बच सकेंगे। उस समय तो उनके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, परंतु अब परमेश्वर ने यह वादा किया है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वो बनाई हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं आभारी हों और उस मौके को हाथ से न जाने दें जिसके द्वारा हम भक्ति और डर सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वे खुश होते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर भस्म करने वाली आग हैं।